ओम शांत। दादा लेखराज कृपालानी के डायरी से सन 1932 में लिखा हुआ। स्वयं भक्ति मार्ग में बाबा का जो चिंतन था, गुरु में जो श्रद्धा थी, वो बाबा ने अपनी डायरी में अपने ही शब्दों में लिखा है तथा अपने से जो बातें की है उसका कुछ अंश उस पूरे डायरी से लच्छुदास जी ने टाइप कराया था 98 में। तो बाबा अपने आप से बात कर रहे हैं, मिथ्या संकल्पों को त्यागो। जो असत है उसको मिथ्या कहा जाता है, तो सत्य क्या, सत्संकल्प क्या है? श्री सदगुरु का ध्यान करो, वो साक्षात वासुदेव हैं, उनको कभी न भूलो। देखो जीते जी जो टाइम चला जाता है वो भी तो सपना तो होता चला जाता है, कई आए कई गए, सब सपना हो गए। बाकी जो सत्य है, आनंद है, शून्य है, यानी कुछ नहीं, शांति, ये एक दिन का हो गया। इसी छोटे छोटे पैराग्राफ में रोज बाबा बात करते। हे नाथ, यही बैठकर चिंतन करता जाऊं तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है, व्यवहार का संकल्प द्वैत का और अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का, शांति। फिर जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो, असत्य वस्तु का फुरना छोड़ दो, सिवाय गुरुदेव के वायरलेस के संकल्प के और कुछ नहीं। वायरलेस उसको याद करो, वो अच्छा संकल्प बताएगा। हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, यही ठीक रास्ता है, नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा, जैसे होता है। इसलिए खबरदार रहो, झूठा संकल्प माया का छोड़ो, सावधान हो जाओ, तू अपने को पहचान, तू तो वही सत्चित्त आनंद वस्तु है, वस्तु मना आत्मा। तो शांत होकर बैठ जा अपने निज आनंद में। जिस तरह सत्संग में सारी दुनिया भूल जाती है, जिस तरह रात को नींद में सारा संसार देखने में नहीं आता है, इसी तरह जागते हुए सब भूलो। फिर कहा कि इसके लिए अपना टाइम मुकरर करके अभ्यास करते रहो, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को 4 बजे उठकर ध्यान करके महिमा का वर्णन करो, सब संसारी मोह को भूलने का अभ्यास करो, तू क्या हो विचार करके मन को वश करने का प्रयत्न करो, कोई भी पाप का काम न करो, दृष्टि को सुधार करके गुरु को हर क्षण याद करके क्षमा करने के लिए दया विनंती करो भगवान से। ओम। फिर चौथा, हे मन, तुम बृहस्पतिवार के दिन बराबर सितंबर तारीख 20 दिसंबर 1932 को अपने आप को अर्पण किया सतगुरु देव की दरबार में, यानी तू मर गया, बिक गया। उस दिन से प्रतिज्ञा की, सब कुछ जो मैं अपना समझ कर बैठा था तो मेरे मरने से सत्य यानी ईश्वर का हो गया। वह तो ईश्वर जाने, एक बारी ये ईश्वर का हो गया, परंतु ईश्वर ने हुक्म दिया है, जो कुछ है हमारे पास वो ईश्वर को दे दिया, समर्पण कर दिया, लेकिन अभी ईश्वर ने हुक्म दिया है कि वो सब अपना नहीं समझ करके कर्म करते रहो, ऐसा होना संभव है व नहीं वो तो ईश्वर जाने। एक बारी ये छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए, देखे आपका ये सब कुछ चलता रहता है या नहीं, तो चलता रहे तो फिर साफ हो जाना चाहिए। संकल्प विकल्प हैरान करता है, क्यों शांत नहीं होता है, अपनी भूल है। अरे बेवकूफ, समझ लो कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वो मर गया, ये दूसरा शरीर अभी मिला है, आगे का नाता मर जाने से सब टूट जाता है, अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है। जो सत्य है, जो कुछ असत है वो खत्म हो जाने वाला है, इसलिए उससे नाता क्या रखना है। सत क्या है? जो नाश नहीं होता। वो क्या है? आत्मा सत, परमात्मा सत। जो सत तेरे में बोल रही है, देख रही है, वो सत आत्मा है, वो अमर है। तू भी तो सत है, सत को ग्रहण करो। श्री सतगुरुदेव का प्रोग्राम कौन सा है, उनकी रहन किस प्रकार की है, कोशिश करो उसी प्रोग्राम पर चलने का। अभी 18 दिसंबर 1932 में जो लिखा है, ए मूर्ख, तू सत है, असत को ग्रहण करो, असत को छुओ नहीं। देखो गुरुदेव जी सत है, असत नजदीक भी नहीं आ सकता। सत बोलते हैं, सत है तब तो सत बोलते हैं, सिर्फ सत ही बोलते हैं। शांत चित्त खुद सत, आत्मा अपने को जानकर संसार को असत समझ शांत स्वरूप सत होकर बैठे हैं, तो हम उनको ईश्वर मानते हैं। उनको ईश्वर किस लिए मानते हैं? वो शांत बैठे हैं, असत्य को त्यागा है। हमारे से बल्कि सभी से जास्ती नामाचारी प्रसिद्ध है, इसीलिए सब कोई उनको सिर झुकाता है। किसके आगे? सत्य के आगे। कोई भी दुख सुख नहीं भासता, दुनिया की कोई भी ताकत दुख नहीं देती। देखो बेवकूफ, तुम कितने फुरने, कितनी चिंताएं इस असत व्यवहार में रहकर भोग रहे हो। फिर तुम भी सत को ग्रहण करके असत से एकदम परे हो जाओ। जो वस्तु विनाशी है वह असत है, उनसे दूर होकर सत को पकड़ो। ए मूर्ख, ख्याल न करो कौन सी ऐसी वस्तु है जो असत नहीं, सब नाशवान है, बाकी सत्य क्या है? अरे मूर्ख, गुरुदेव के पास ऐसा कौन सा जादू है जो सभी नमन करते हैं? कोई पैसा कौड़ी या कोई माल मिल के देते हैं इसलिए झुकते हैं? नहीं, किनारे होकर बैठा है। हाँ, बैठकर उपदेश देता है कि असत्य को न पकड़ो, सब नाशवान है, माया कुटुंब, अरे ये सब असत है, शरीर भी असत है, बाकी क्या? अरे जबकि सब नाशवान है फिर तुम क्यों मुंझे हो? तुम्हारा तू नहीं हो, बाकी तुम्हारा क्या है? अच्छा, आज तुमको लॉटरी आई, धन मिला, अच्छा औलाद मिला, परंतु तुम आज मर जाता है, फिर तुम्हारा धन कहाँ गया? अरे तुम अपना कुछ नहीं समझो, तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है जो सत है। अगर तुम समझता हो कि मैं ईश्वर बनूं, तो क्या करें? तो असत को न पकड़ो तो तुम भी गुरुदेव जैसा पूजे जाओगे। तुमको भी सभी गुरुदेव कहे ऐसी चलन सत चाहिए। कल की मुरली में था, माता ऐसी हो कैसी, सब माता टेके, माता की मंतेश्वरी के लिए कहा ना, तो गुरुजन की जैसी चलन हो तो हम भी गुरुदेव जैसे पूजे जाएंगे। तुम्हारा है ही क्या? कुछ सोचो, प्रतिज्ञा करो असत को न छूने की। अगर तुम्हारा शरीर भी असत, तो बाकी तुम्हारा है ही क्या? तुम्हारा ठिकाना कौन सा है? आज आज हो कल नहीं होंगे, किसका इंतजार रखकर बैठे हो? छोड़ो इंतजार को, तुम बाकी जो हो सत हो, क्यों मूंझ रहे हो? देखो गुरुदेव कितना शांत बैठे हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं है, करके तुम्हारा आदर सत्कार पाया है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं और है भी सच, ऐसा तो बाकी फिर क्या रहा? है भी सच तो फिर बाकी क्या रहा? असत को छोड़ो तो तुमको भी आदर सत्कार मिलेगा, करके देखो। परंतु कमजोर नहीं बनना, बेईमान नहीं होना। गुरुदेव क्यों आनंद में है जांच करके देखो। वो अपना सब कुछ नहीं समझते हैं, वो अपना कुछ नहीं समझते, दूसरों को भी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है? जो खुद अपना नहीं है तो फिर दूसरा कुछ उनका कैसे हो सकता? इसलिए अगर आनंद प्राप्त करना है तो तुम सत होकर असत को दूर करो, तो मान प्राप्त करो। बाकी जो तुम्हारे पास, तुम्हारे में जो सत्य है, वो तो शरीर के बगैर दूसरों में भी है। वो प्यारी चीज सत्य लाइट की तरह चमकने वाली जो शरीर से निकल जाती है तो शरीर बिगर चमक वाला हो जाता है, क्योंकि शरीर असत है। बाकी जो चीज आत्मा शरीर से निकल जाती है वो सत्य है। सचमुच प्यार उसी को किया जाता है, वो प्यार वाली चीज सत जाकर सत में समा जाती है, जो लाइट से मिल लाइट हो जाती है, मिलते मिलते मिल जाएंगे, जो लाइट से मिल लाइट हो जाती है, और शरीर बिगर लाइट के रह जाता है, तो फिर उनको क्या किया जाता है? हाँ, फिर उनको जलाया जाता है। पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर नाशवान हो जाता है। हे भाई, भला तुम इसमें मूझने वाले चलन को पकड़ के क्यों रखा है, क्यों बैठा है? देखते हो कि मन में मूझ होती है, मन चलायमान होता है, जबकि तुमको इनसे भी उसमें आराम देखने में आता है, तो फिर उसको चिपक के क्यों बैठा है? देखो तो गुरुदेव कैसे शांत बैठे हैं, भला बताओ उनको कोई चिंता है? आनंद के सिवाय और क्या है? क्यों ये मूर्ख, तुम भी इस तरह से आनंद में शांत चित होकर नहीं रोकर रहो? तुमको कौन सी जरूरत है व्यवहार में रहने की, जो दिल में मूंज डाल रोने जैसी सूरत करता है, क्यों नहीं इस मूंज को फेंकता है? ए भाई, शरीर का ठिकाना नहीं है, किसी भी समय बिगड़ पड़ेगा, फिर चिंता हो पड़ेगी। शरीर कमजोर होने से मोह ममता ये चोर तुमको बहुत सताएंगे, खास करके मोह जो माया में कुटुंब में इतने वर्षों का पड़ा हुआ है वो तुमको सताएगा, तुमको कमजोर देख तुम्हारे ऊपर वार करेगा। तुम अभी कोशिश करो एकांत में रहने की और सत्य को ग्रहण करने की। कुछ नुकसान पड़ेगा व बीमार पड़ेगा तो फिर मन दुखाएगा, अरे हम तन मन जब अच्छा था कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाए, उनसे तो जल्दी फेंको इस झूठा जंजाल को। देखो संत लोग जो सब सुखी है, पेट के लिए भोजन मिलता रहता, भजन करते रहते, वे कितनी न सुखी है। जो सभी आकर नयन झुकाते ये कौन है, ये भी तो तुम्हारे जैसा इंसान है, परंतु उन्होंने समझा है कि माया कुटुंब में अशांति है, बिगर माया कुटुंब आदि के शांति और आनंद है। अब तुम भी प्रतिज्ञा करो कि काम काज को छोड़ किनारे होकर देखो, फिर भी अगर सुख न देखो तो फिर चले आना वापस, कमजोर होने का काम नहीं है। हे मन, छोड़ो इस खिटपिट को, शिवाय शांति के और है ही क्या? इतनी सब मारा मारी माथा कुटी किसके लिए? तुम तो सत हो, अरे अपने को पहचानो, क्यों आकर इन माया के दुखों में अपने को फंसाया है? बहुत ही तुमने धक्के खाए, अब धक्के खाने से मुक्त हो जाओ। बेवकूफ, जल्दी करो, देर न करो, मौत आया कि आया, मौत हर वक्त सवार है, कोई पूछेगा वा बताएगा थोड़ी, अचानक से आएगा फिर समय नहीं मिलेगा। तैयारी करते वर्ष बीत गए, तुमने अंजाम किया था कि मैं 42 वर्ष का होऊंगा फिर ये व्यवहार फेंक दूंगा, फिर कहां गया वो तेरा अंजाम? ए मूर्ख, फंसता ही जाएगा, कोई भी व्यवहार करेगा तो मन में मूझ चली आएगी, क्योंकि पक्का मतलब पूरा अपने को नहीं पहचाना है, अर्जुन तक मैं और मेरा करता रहता है। छोड़ो, जितना जल्दी छोड़ो उतना अच्छा, कुछ तो आनंद लो। हे गुरुदेव, कृपा करो, कोई रास्ता बताओ। हे प्रभु, आप तो समर्थ हो, आप कोई भी चाबी फेर सकते हो, जल्दी करो। हे नाथ, देर न करो। हे भाई, सब देकर लेकर जिसका है करो खलास। दियो टुबकी तो उतरे मुंजारा, मना दे दान छुट्टे ग्रहण, सिंधी में लिखा। तुम्हारा है ही क्या? 6 मास के लिए अंजाम करो कि मैं एकांत में शांत चित होकर रहूंगा, फिर देखो तो क्या होता है। सोच करो तो फालतू कितने मुंजारे आते हैं, जिसमें मन फिसलता रहता है, दिल मुरझाई रहती है, उनसे फायदा ही क्या? अब फेंको इस झूठ को, लो सच का रास्ता, लो प्रभु की शरण, गुरुदेव जैसा शांत चित्त होकर रहो। अंधेरे में भी, अंधेरे में सभी की तरह इतने वर्ष बीत गए, तुम अंधकार में रहा, अच्छा अब जागो, एकदम जागो। जो समय रहा है बाकी वो भी ठीक है, फिर उसको न गवाओ। बहुत गई थोड़ी रही, अब भी समझ लो, थोड़ी देर के लिए शांत चित्त हो जा। जब तक अपने आप को पहचान लो, पीछे दुख और मूंज नहीं होगी, शांत हो जाएंगे। तू अपने को संभाल, कौन है जो तुमको हैरान करता है? तू अपने आप को क्यों हैरान करता रहता है? सोच एक बेवकूफ, शांत कहाँ है, ना शांति कहाँ है? सोचो, वहां जा जहां शांति है। तेरा क्या है, तू क्यों हैरान होता है? चुप होकर बैठ, अच्छा मौन में बैठ जा, ऐसा करके देखो। कोई तुम्हारे पास नहीं आवे, बोलो मेरा कुछ नहीं है, जिसका है उनसे पूछो, मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं कहां हूं? छोड़कर इस खिटपिट को तुम शांत होकर बैठ जाओ, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, और सब कुछ भूल जा। अरे अपने को भी भूल जा, एक को याद करो। गुरुदेव जन भी बोलते हैं कि मैं एक को जानता हूं और किसको नहीं जानता हूं, तो तुम भी एक को याद करो, एक को जानो और सबको भूल जाओ। एक क्या है, वो एक क्या है, सुन्न हो जा, जीते जी मरकर सुन्न हो जा। जैसे गुरुदेव को कोई बाहर का फुरना नहीं, सत हो गए, तुम भी सब फुरना छोड़ करके सत हो जाओ। तुम भी मर जाओ तो दुनिया आपे ही मर जाएगी। तुम मर गया मानो मर गई सारी दुनिया, खेल खत्म। क्यों भटकता फिरता है, क्यों अपने को आप दुखी कर रहे हो, क्यों बोलता है कि मैं इस संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं? दुख कौन पैदा करता है? अरे तू अपने आप पैदा करके फिर बोलता है कि दुख, दुख कहाँ है? तू तो सुख स्वरूप हो, सब दुख छोड़कर सुख स्वरूप शांत हो जा, फिर देखो कि सुख है या दुख है। आपे ही खड्डा खोदकर उसमें गिर रहे हो। तुम ऐसा मूर्ख हो जो पीछे बोलता है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। वाह, तुम तो बड़े मूर्ख बेवकूफ हो, खबरदार आपसे शांति धारण कर लो। दुख जिसमें है उसको छोड़ दो, अच्छा तुम बहादुर होकर काम करता रहो, उसमें लिपायमान मत रहो। खुद अपने आप से बात कर रहा है, अपने मन को एकांत में बैठ के दादा लेख रहा है, अपने मन से जो वार्तालाप किया उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। जैसे बाबू बोलते ना कचहरी लगाओ, अपने आप को कहो ना, अपने आप से। हाँ आपको नहीं बोल। तो बाबा कह रहे वहां तुम बड़े मूर्ख बेवकूफ हो, खबरदार आप तो शांति में धारण कर लो। दुख जिसमें है उसको छोड़ दो, अच्छा तुम बहादुर होकर काम करते रहो, उसमें लिपायमान मत हो। लिपायमान मना, वो तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ भी बात की चिंता या संकल्प विकल्प न करो, कर्म करके चुप हो जाओ। अपना महत्व न रखो, महत्व न रखो मना, मैंने किया मैं पर न, तू कार्य निमित्त मात्र होके करो और आनंद में रहो, टाइम ठीक रखो, कोई भी काम निश्चय पूर्वक करो, अलमस्त होके अलमस्त के माफिक बेपरवार हो, कुछ भी हो जाए कोई भी झंझट न समझो, मौज में रहो। तेरा कुछ नहीं, क्योंकि मौज में क्यों रहो, क्योंकि तेरा कुछ नहीं, थोड़ा टाइम कार्य कर लो, बाकी प्रोग्राम बना दो कि क्या करने से आनंद में मस्त रह सकूं। हाँ प्रोग्राम बनाओ कि क्या करके रहने करने से मैं आनंद में रह सकता हूँ, मस्त रह सकता हूँ। और जास्ती बात न करो, दो शब्द में काम खलस, बाकी टाइम गुरुदेव जी जैसे सत है वैसे तुम भी सत और आनंद में सत होने का चिंतन करते रहो। कोई भी उपाय ढूंढ निकालो जो तुम कर्म भी करते रहो परंतु निरीक्षा से और उल्लास से। निरीक्षा मन नाम मान शांति पाए और उल्लास। हे मन, तू एक निश्चय करो कि तुमको क्या करना है। तुम शांत हो, शांत चित्र होकर रहना चाहते हो तो क्या करें? तो मन की मूंज मिटा दो। तू तो दास है, जो कुछ करता है मालिक के लिए, मालिक के हुक्म से करता है, वही कराता है। मैं मर गया, बस आप हो ऐसे बरतते रहो, बस आप ही हो ऐसे बरतते रहो। घड़ी घड़ी ये ख्याल रखो कि ये दास है, ये दास है, मतलब सेवादारी है, हमेशा सेवादारी समझना। एक बाप दूसरा न कोई, सब उस मालिक का है जो छीन, जो कभी भी छीन सकता है, ले सकता है। ये दास बिना प्रभु के हुक्म से क्या कर सकता है? हे नाथ, सिवाय आपके हुक्म कुछ हो नहीं सकता। जब तू ऐसी ताकत वाले का दास है तो तुझको क्या परवाह? क्या परवाह? तुम जब तुम ऐसी ताकत वाले का दास हो, मना इसे हम किस संस्था के सेवादारी है, किस सत का हूं मैं, सत वस्तु जो हूं तो सब सत का है, असत्य नाशवान है। पढ़ू थोड़ा टाइम, कितना टाइम है? तो फिर 30 दिसंबर 1932 का है। बादशाह आत्मा ने मन को कहा, हे भाई वजीर मन, मुझे तुमसे प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करनी है। टाइम सुबह सवेरे का ठीक रहेगा? वजीर मन ने कहा, भाई साईं मैं हाजिर हूं, साईं आत्मा के लिए कह रहे, परंतु मैं कुछ दाल में काला देखता हूं, दाल में काला। मन कहता है बादशाह आत्मा को, साईं मैं हाजिर हूं परंतु मैं कुछ दाल में काला देखता हूं। कुछ समय से आपके रहन सहन में कुछ फर्क हो गया है, आप मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते रहते हो। खैर मैं हाजिर हूं। बादशाह आत्मा ने बोला, ठीक है, कल सुबह को जो होगा सो विचार करेंगे। विचार करेंगे कल, कितना टाइम है? चलो फिर 31/12/1932 में जो लिखा है, बादशाह आत्मा ने बोला, हे भाई मन, तू मेरा वजीर होकर तुमने बहुत दिन दखल जमाया है। तुम वजीर होकर बादशाह को गफलत में देखकर तूने मेरे अमलदारों को साथ में लेकर, कौन अमलदार तुमने साथ लिए?
कर्मेंद्रिया।
एक तो, कौन से कर्मेंद्रियों का नाम पहला कौन सा कर्मेंद्रिय? नहीं, दूसरे विकारों में सुना। कौन अमलदार तुमने साथ लिए? एक तो स्पेशल आर, मैंने सबसे बड़ा काम अमलदार, काम विकार, काम अमलदार। दूसरा कमिश्नर अमलदार, क्रोध को तूने साथ लिया। तीसरा कोतवाल, लोभ को। चौथा सिपाही, मोह को साथ लिया। पांचवा अमलदार, सुबेदार, अहंकार को साथ लेके तुमने बहुत दिन धूमधाम से मेरा राज्य चलाया। मुझे इन अमलदारों की रस्सियों में जकड़ के खूब तूने मुझे नाच नचाया। अमलदार मना जो पुलिस वाले होते ना, हवालदार, पूरा उनकी टीम पुलिस की। हे भाई वजीर मन, तुम हमारी बात तो सुन। थोड़ा रोज हुआ तो मैं एक दूसरे बादशाह के पास गया था। उसने मुझसे कहा, तू अपने वजीर के हाथ में अंधा होकर गफलत में पड़े हो, उसके अधीन होकर अपने अमलदारों के हाथों से ठोकरे खा रहे हो। तेरा वजीर मन बड़ा बेईमान दिखता है, जो अमलदारों के साथ मिला हुआ तेरे ऊपर अपना दबाव रख के तेरा राज्य चला रहा है। अरे, और तूने अपना जो बड़ा शहंशाह परमात्मा है, जिसने आपको लायक समझ के बादशाह बना के भेज दिया है, और हुक्म दिया था कि खबरदार तुम हमको भूल नहीं जाना, अच्छी तरह से राज चला के आओगे और अच्छा फायदा राजधानी में रहकर निकाल के मेरे पास आएंगे, तो छोटे बादशाह आत्मा से बड़ा बादशाह परमात्मा बना दूंगा। बाप समान बना, यानी अपने साथ मिला दूंगा, यानी आत्मा छोटा बादशाह को परमात्मा बड़ा बादशाह से मिला लूंगा। यानी जैसे समुद्र से निकली हुई लहर को अपने साथ फिर समुद्र में मिला लूंगा, और जो ईमानदारी से राज्य नहीं चलाएंगे तो तुमको गिराकर तुम जैसा कर्म करोगे ऐसे नीचे दर्जे के जन्म में फिर तुझको भेज दूंगा। हे मेरे प्यारे वजीर मन, मैंने तुझसे ये फैसला करने के लिए टाइम मुकरर किया था, सो तुम बैठकर शांत से सुन। आज थोड़े रोज की बात है कि मैं जो तेरा बादशाह हूँ, सो कोई दूसरे बादशाह के पास गया, उसको मैंने अपने से बहुत अच्छी हालत में देखा, बहुत आनंद में देखा, लाख बार आनंद में देखा। हे मेरे प्यारे मन, मैं तुझसे एकांत में बैठकर कुछ बातचीत करना चाहता था। ये बातचीत इस किस्म की है, हे मेरे प्यारे मन, तुम एकांत में बैठकर मेरी बात तो सुन। मैं थोड़ा रोज हुआ तो एक स्थान पर गया था, वहां मेरा एक सत्पुरुष से मिलाप हुआ। मैं उस पुरुष को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको देखकर मैं दिल में सोचा कि यह पुरुष कैसा सुखी है, कैसा आनंद में बैठा है, शांत साफ कैसा प्यारा लग रहा है, कितना सुखी है सत्पुरुष दिखता है, क्या है इसमें, है तो मेरे जैसा मनुष्य, फिर ये कैसा आनंद में शुद्ध बोलता है, शुद्ध रहता है। मैं उसके पास बहुत आनंद में आ गया था। दूसरे दिन खास, आप कहते हो जिनके बंधन कट जाते हैं उनको सहज होता है, क्योंकि औरों से मुंह निकालकर एक ईश्वर में ही रहता है, क्योंकि बंधन टूट जाते हैं तो फिर मोह का ख्याल उस तरफ नहीं दौड़ता, बाकी व्यवहार भी छोड़ देता। कुटुंब से मोह टूटा तो बंधन खलास, फिर तो सहज होता है, या कुछ न हो तो भी पेट तो सहज मिल जाता है, पेट के लिए तो दो रोटी सहज मिल जाती है। हे ईश्वर जरूर पहुंचाता है, जो ईश्वर जरूर पहुंचाता है, शरीर के साथ वो खुद जिम्मेवारी उठाते, लौकिक में बोलते हैं जिसने जन्म दिया है। बाकी पीछे फुरनों के बंधन कट गए तो बहुत सहज है, शांत होकर बैठना शांत रूप होने का है, क्योंकि मन ऐसा है क्या बंधन टूटे, क्योंकि जिस तरह तुम कोई भी निश्चय पूरा रखेगा तुम समझो कि बंधन तुम्हारे खलास है, समझो कोई भी तुम्हारा नहीं है, सभी नारियां देवियां है, सभी नर देव है, सब एक है, या सोचो मैं तो मर गया हूं, यानी ये देह नहीं है, ये निश्चय कर लो तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं हूं ही नहीं, मैं मर गया, बाकी हे नाथ तू ही तू, मेरा कुछ नहीं। भाई ये पक्का कर लो कि न कोई तुम्हारा न तू किसका, मेरा कुछ नहीं सब तेरा, जो आज मेरा वो सब हो गया तेरा। ओके।